एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञानगोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट पुटनम की बोलिंग अलोन।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब वैसे तो अमेरिकी समाज के बारे में है, पर इसमें जो बातें हैं ना, जैसे समुदाय का कमजोर होना, लोगों का अकेलापन, लगता है आजकल ये सब जगह की कहानी है, शायद हमारे यहाँ भी।
बिल्कुल, ये नाम ही देखिए, बोलिंग अलोन, अकेले बॉलिंग करना, कितना अजीब लगता है सुनने में, है ना?
हाँ।
तो पुटनम इसी तरह के उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे ये जो आपसी जुड़ाव है, जिसे वो सामाजिक पूंजी कहते हैं, वो कम हुआ है।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामाजिक पूंजी आखिर है क्या बला, और ये कम क्यों हो रही है, और सबसे जरूरी, इसका हमारी जिंदगी पर, सेहत पर और हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है।
सही, तो ये कोई सूखी अकादमिक चर्चा नहीं होगी, ये हमारे अपने अनुभवों से जुड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं।
पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, रॉबर्ट पुटनम।
हाँ बिल्कुल, ये हार्वर्ड केनेडी स्कूल में प्रोफेसर हैं, अमेरिका के, आप कह सकते हैं टॉप राजनीति विज्ञानियों में से एक।
और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, इन्होंने दशकों तक, मतलब असल दुनिया में रिसर्च किया है, खासकर सामाजिक पूंजी, नागरिक जुड़ाव, इन सब पर।
सही कहा, इनकी एक और किताब थी पहले, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, वो भी काफी मशहूर हुई थी।
हाँ, उसमें उन्होंने इटली के अलग अलग इलाकों का अध्ययन किया था और ये दिखाया कि जहाँ लोगों में आपसी मेलजोल, भरोसा, मतलब सामाजिक पूंजी ज्यादा थी,
वहां सरकारें बेहतर काम करती थीं।
बिल्कुल, तो उसी रिसर्च ने एक तरह से बोलिंग अलोन के लिए जमीन तैयार की।
और उनका अंदाज भी थोड़ा अलग है, वो आंकड़ों को कहानी की तरह पेश करते हैं, भारी भरकम डेटा को भी समझने लायक बना देते हैं।
चलिए अब किताब पर आते हैं, बॉलिंग अलोन। तो ये किताब बेसिकली 20वीं सदी के आखिरी कुछ दशकों में अमेरिकी समाज में जो बदलाव आए, उनका एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, दस्तावेज है।
हाँ, और किताब का जो मेन पॉइंट है वो ये कि इस दौरान अमेरिकियों का अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, यहाँ तक कि वोट डालने जैसी चीजों से भी जुड़ाव कम हुआ है।
इसी जुड़ाव, इसी आपसी भरोसे और मदद की भावना को पुटनम सामाजिक पूंजी कहते हैं, मतलब ये वो अनदेखा नेटवर्क है जो समाज को चलाता है।
और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, पुटनम ने ढेर सारे आंकड़े दिए हैं, हर तरह की सामाजिक भागीदारी में गिरावट।
जैसे?
जैसे वो स्कूल की पीटीए मीटिंग्स होती है ना, उनमें कम लोग आने लगे, रोटरी या लायंस जैसे क्लब्स की मेंबरशिप घट गई,
चर्च जाने वाले कम हो गए, यूनियनों का असर कम हो गया, लोग पड़ोसियों से हाय हेलो भी कम करने लगे।
और वो बॉलिंग वाला उदाहरण, वो तो कमाल का है।
हाँ बिल्कुल, लोग आज भी बॉलिंग करते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा,
पर अब लीग बनाकर नहीं खेलते। पहले जैसे टीमें होती थीं, लोग हफ्ते में मिलते थे, गपशप होती थी,
वो चीज खत्म हो गई। अब बस अकेले गए, खेला और वापस, खेल वही पर वो सामाजिक ताना बाना गायब।
यही है बोलिंग अलोन।
और पुटनम साफ कहते हैं कि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, मतलब पुरानी यादों में खोना नहीं है, ये जो सामाजिक पूंजी घट रही है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सेहत और खुशी के लिए, सबके लिए एक सीरियस खतरा है।
बिल्कुल, तो ये किताब एक तरह से अमेरिका के समाज का डायग्नोसिस है, और साथ में एक पुकार भी कि भाई जागो, इस बिखराव को रोको।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। पुटनम शुरू करते हैं इसी अकेले बोलिंग वाले मेटाफर से, और फिर समझाते हैं कि ये सामाजिक पूंजी है क्या।
हाँ, वो कहते हैं ये तीन चीजें हैं बेसिकली, हमारे सोशल नेटवर्क्स, मतलब हम कितने लोगों से जुड़े हैं, दूसरा पारस्परिकता का नियम, यानी लेन देन की भावना, एक दूसरे की मदद करना, और तीसरा इन सबसे पैदा होने वाला भरोसा।
और ये तीनों चीजें, नेटवर्क, मदद, भरोसा, एक दूसरे को मजबूत करती हैं, ये मिलकर ही समाज को असरदार बनाती हैं, अच्छे लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है और हमारी अपनी भलाई के लिए भी।
किताब का जो दूसरा भाग है वो पूरा आंकड़ों से भरा है, गिरावट दिखाने वाले आंकड़े, जैसे राजनीतिक भागीदारी को लें।
हाँ, वोटिंग परसेंटेज गिरा है।
बिल्कुल, लोग पॉलिटिकल रैलियों में कम जाते हैं, किसी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना वो भी कम हुआ है, पब्लिक मीटिंग्स में जाना सब घटा है।
फिर आती है नागरिक भागीदारी, मतलब वो पारंपरिक संस्थाएं जैसे महिलाओं के संगठन या वो सर्विस क्लब्स होते ना, रोटरी, लायंस। 1960 के बाद तो इनकी मेंबरशिप में भारी गिरावट आई, ये वो जगहें थी जहां अलग अलग बैकग्राउंड के लोग मिलते थे।
सही।
फिर धार्मिक भागीदारी, इसमें भी पैटर्न दिखता है। हो सकता है लोगों का भगवान पर भरोसा उतना ही हो, पर
वो नियमित रूप से मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना, वहां के कामों में लगना, वो कम हुआ है, खासकर नई पीढ़ी में।
और ये जगह भी तो सोशल हब थी एक तरह से। बिल्कुल। और काम की जगह पर भी रिश्ते बदले हैं। लोग शायद ऑफिस में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, पर
वो लंबा सफर, बार बार नौकरी बदलना, ऑफिस का माहौल, इन सबसे वो पहले वाली बात नहीं रही। सहकर्मियों से दोस्ती शायद उतनी गहरी नहीं रही।
हाँ, और यूनियनों का कमजोर होना भी इसी का हिस्सा है।
किताब का तीसरा हिस्सा फिर हमारे निजी रिश्तों पर आता है, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से मिलना जुलना।
और यहाँ भी वही कहानी, गिरावट।
हाँ, दोस्तों को घर खाने पर बुलाना या ताश खिलने बैठना, रिश्तेदारों से मिलने जाना, पड़ोसियों से बात करना, ये सब कम हो गया है। सर्वे दिखाते हैं कि खाली वक्त लोग साथ में कम बिता रहे, अकेले ज्यादा, अक्सर स्क्रीन के सामने।
और इसी से जुड़ा है सामाजिक भरोसा, मतलब ये मानना कि ज्यादातर लोगों पर यकीन किया जा सकता है। इसमें भी बहुत बड़ी गिरावट आई है।
ये तो बहुत चिंता की बात है। अगर भरोसा ही नहीं रहा तो समाज चलेगा कैसे?
सही। स्वयं सेवा या दान देने में शायद उतनी कमी ना हो, पर पुटनम कहते हैं वो भी आजकल अक्सर अकेले ही होता है, जैसे ऑनलाइन डोनेशन। वो ग्रुप वाली बात कम है।
तो ये सब हुआ क्यों? मतलब इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है? किताब का अगला हिस्सा ऐसी जासूसी में लगता है।
हाँ, पुटनम कई संदिग्धों को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुछ तो आम वजह हैं, जैसे वक्त की कमी, आजकल पति पत्नी दोनों काम करते हैं,
पैसों का दबाव,
लोगों का शहरों में आना जाना, नौकरी के लिए यहाँ से वहाँ जाना, और शहरों का फैलाव जिससे आने जाने में ही घंटों निकल जाते हैं,
महिलाओं का बड़ी संख्या में वर्कफोर्स में आना, परिवार का साइज छोटा होना, ये सब भी हैं।
पुटनम मानते हैं कि हाँ, इन सबका रोल है, पर ये पूरी कहानी नहीं बताते। शायद हर कारण का 10% हिस्सा हो।
तो फिर असली खिलाड़ी कौन है?
पुटनम दो बड़े खिलाड़ियों की पहचान करते हैं। पहला, और ये काफी चौंकाने वाला है, टेलीविजन,
टीवी।
हाँ, पुटनम का अंदाजा है कि करीब 25% गिरावट के लिए अकेला टीवी जिम्मेदार है।
बाप रे, कैसे?
लोग बाहर मिलने जुलने, किसी क्लब में जाने, पड़ोसियों से बात करने के बजाय घर पर टीवी देखने लगे। इसने हमें एक्टिव नागरिक से पैसिव दर्शक बना दिया।
ये तो सोचने वाली बात है।
और दूसरा बड़ा कारण, जो शायद सबसे ज्यादा वजन रखता है, करीब 50% गिरावट के लिए जिम्मेदार, वो है पीढ़ीगत बदलाव।
पीढ़ीगत बदलाव मतलब?
पुटनम एक खास पीढ़ी की बात करते हैं, लंबी नागरिक पीढ़ी। ये वो लोग थे जो करीब 1910 से 1940 के बीच पैदा हुए।
अच्छा।
इस पीढ़ी ने बड़े राष्ट्रीय संकट देखे थे, जैसे महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध। इन अनुभवों ने उन्हें मिलकर काम करना, समुदाय से जुड़ना सिखाया। ये लोग बहुत ज्यादा सामाजिक रूप से सक्रिय थे।
लेकिन जैसे जैसे ये पीढ़ी गुजर रही है, उनकी जगह जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, वो उतनी एक्टिव नहीं है।
तो ये किसी व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के अनुभवों और आदतों का फर्क है। वो जो सामाजिक जुड़ाव की आदत थी, वो शायद अगली पीढ़ी में उतनी मजबूती से पास ऑन नहीं हुई।
तो ठीक है, मान लिया सामाजिक पूंजी घट गई, टीवी ने घटा दी, पीढ़ियों के बदलने से घट गई, पर इससे होता क्या है? सो व्हाट? किताब का आखिरी हिस्सा इसी तो क्या का जवाब देता है।
और जवाब काफी गंभीर है, जैसे शिक्षा पर असर। जहां सामाजिक पूंजी ज्यादा है, वहां स्कूल बेहतर परफॉर्म करते हैं, बच्चे ज्यादा सीखते हैं।
अच्छा।
हाँ, फिर सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। जिन समुदायों में भरोसा और जुड़ाव ज्यादा है, वहां क्राइम कम होता है, लोग सेफ महसूस करते हैं, और बिजनेस भी बेहतर चलता है, आर्थिक विकास होता है।
और सेहत और खुशी, इसका क्या कनेक्शन है?
ये तो और भी कमाल का है। पुटनम दिखाते हैं कि हमारे सोशल कनेक्शंस हमारी सेहत के लिए, हमारी उम्र के लिए उतने ही जरूरी हो सकते हैं जितना सिगरेट छोड़ना या कसरत करना।
सच में?
हाँ, अकेलापन सचमुच जानलेवा हो सकता है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास दोस्त है, परिवार है, समुदाय है, वो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा लंबा जीते हैं।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन किताब निराशा में तो खत्म नहीं होती होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी चैप्टर का नाम ही है बॉलिंग टुगेदर, मिलकर बोलिंग करना। पुटनम चेतावनी जरूर देते हैं कि ये गिरावट खतरनाक है, पर वो उम्मीद भी जगाते हैं।
कैसे?
वो कहते हैं कि इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है, समाज बिखरा है और फिर लोगों ने सचेत होकर उसे फिर से जोड़ा है, जैसे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। उन्होंने नए क्लब बनाए, नई संस्थाएं बनाई।
मतलब ये बदला जा सकता है?
बिल्कुल। संदेश यही है कि ये हमारी नियति नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें लेकर चलें? पहला तो शायद यही कि सामाजिक पूंजी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है।
हाँ, ये हवा हवाई बात नहीं है, ये समाज के लिए उतनी ही जरूरी है जितना पैसा या हुनर। ये लोकतंत्र की, अर्थव्यवस्था की, हमारी अपनी जिंदगी की, सबकी जड़ है।
इसे हल्का में नहीं ले सकते। दूसरा सबक, पीढ़ीगत बदलाव का रोल। ये समझना जरूरी है कि ये गिरावट सिर्फ हमारी आदतों का नतीजा नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जाने और दूसरी के आने का भी नतीजा है।
हाँ, और ये सवाल उठाता है कि क्या हम नई पीढ़ी को वो जुड़ाव सिखा पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी पास ऑन कर पा रहे हैं।
तीसरा, टेक्नोलॉजी का रोल। टीवी ने घरों में कैद किया, आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये जोड़ते भी हैं, पर क्या ये असली रिश्तों की जगह ले सकते हैं?
ये बड़ा सवाल है। ये हमें एक तरह के आभासी जुड़ाव में तो नहीं फंसा रहे? टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, इस्तेमाल कैसे करें ये हम पर है।
चौथी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी, हमारी अपनी खुशी और तरक्की हमारे समुदाय से जुड़ी है, हम अकेले खुश नहीं रह सकते।
बिल्कुल, जहां समाज मजबूत होगा वहीं व्यक्ति भी फलेगा फूलेगा, स्कूल अच्छे होंगे, मौके मिलेंगे, सेहत बेहतर होगी, ये सबका साथ वाली सोच।
और पांचवा, वो बॉन्डिंग बनाम ब्रिजिंग वाला फर्क।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग मतलब अपने जैसों से जुड़ना,
राइट।
अपनी जाति, अपना मोहल्ला, ये अपनापन देता है।
और ब्रिजिंग मतलब?
ब्रिजिंग मतलब अलग अलग तरह के लोगों से जुड़ना, पुल बनाना, जैसे किसी स्पोर्ट्स क्लब में या किसी सामाजिक संस्था में। लोकतंत्र के लिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए, ये ब्रिजिंग कैपिटल बहुत जरूरी है। पुटनम दिखाते हैं कि अमेरिका में दोनों कम हुई हैं।
और आखिर में सबसे उम्मीद भरी बात, बदलाव मुमकिन है।
हाँ, ये सब सुनकर निराश होने की जरूरत नहीं, अगर हम ठान लें तो हम इसे बदल सकते हैं।
By chance.
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिल को छूती हैं, जैसे वो सामाजिक पूंजी की परिभाषा।
सामाजिक पूंजी व्यक्तियों के बीच संबंधों को संदर्भित करती हैं, सामाजिक नेटवर्क और उनसे उत्पन्न होने वाली पारस्परिकता और भरोसेमंदता के मानदंड।
मतलब रिश्ते, लेन देन और भरोसा, कितना सिंपल।
और वो बदलाव की तस्वीर खींचती पंक्ति 20वीं सदी के पहले दो तिहाई हिस्से में एक शक्तिशाली ज्वार लोगों को समुदायों से जुड़ रहा था, लेकिन वो ज्वार उलट गया। ऐसा लगता है जैसे कोई सुनामी आई हो।
टीवी के असर पर वो बात भी सोचने लायक है कि टीवी देखना आपको उतना ही अलग थलग कर सकता है जितना अमीर या गरीब होना। टेलीविजन देखने का प्रभाव मोटे तौर पर एक अलग सामाजिक वर्ग से संबंधित होने के प्रभाव के बराबर है।
और सामाजिक पूंजी क्यों जरूरी है? इसका सार, नागरिक जुड़ाव हमें होशियार, स्वस्थ, सुरक्षित, अमीर और एक न्यायपूर्ण समाज पर शासन करने में बेहतर बनाता है।
मतलब हर तरह से फायदेमंद।
सही। और पूरी किताब का निचोड़ एक लाइन में, हमें एक दूसरे से फिर से जुड़ने की जरूरत है, बस इतनी सी बात।
तो अब सवाल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, व्यक्तिगत स्तर पर।
हाँ, ये सबसे अहम है। शायद पहला कदम तो यही है कि हम सचेत हों, अपने रिश्तों को वक्त दें, दोस्तों को फोन करने के बजाय मिलें, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं,
स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें शायद।
हाँ बिल्कुल, और बाहर निकलें, पड़ोसियों से बात करें, किसी लोकल ग्रुप या क्लब से जुड़ें, चाहे वो बुक क्लब हो, योगा क्लास हो या मोहल्ले की साफ सफाई का अभियान।
और सामुदायिक स्तर पर?
वहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी जगहें बनाना जहाँ लोग आसानी से मिल सकें, अच्छे पार्क, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, मोहल्ले के त्योहार, छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित करना।
हाँ, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWA वगैरह।
हाँ।
उनको सिर्फ शिकायतें करने की जगह न बनाकर कुछ पॉजिटिव करने का प्लेटफॉर्म बनाएं।
बिल्कुल, स्कूल की मीटिंग्स में जाएं, ये छोटी छोटी चीजें ही सामाजिक पूंजी बनाती हैं।
दफ्तरों में भी शायद कुछ किया जा सकता है।
हाँ, ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग सिर्फ काम न करें बल्कि एक दूसरे से जुड़े, थोड़ी अनौपचारिक बातचीत हो, और ऐसी नीतियाँ जो वर्क लाइफ बैलेंस में मदद करें ताकि लोगों के पास समुदाय के लिए वक्त हो।
और बड़े लेवल पर नीतियां बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनका समाज के जुड़ाव पर क्या असर पड़ेगा।
सही कहा, शहर ऐसे बने जहां लोग पैदल चलें, मिलें जुलें, स्कूलों में सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र पर और सेवा पर जोर हो, विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं, मजबूत समुदाय भी है।
तो कुल मिलाकर मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि हमारी अपनी खुशी, हमारी सेहत, सब कुछ हमारे आसपास के समाज से कितना गहरा जुड़ा है। हम अकेले टापू नहीं हैं।
बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो गिरावट है ये कोई किस्मत का लिखा नहीं है, इसे बदला जा सकता है। ये हमें जिम्मेदारी देता है पर उम्मीद भी देता है कि हम कुछ कर सकते हैं. वी कैन बी द चेंज.
हाँ, और शायद आज के इस दौर में जहाँ इतना ध्रुवीकरण है, इतना अविश्वास है, अकेलापन बढ़ रहा है, पुटनम की ये किताब हमें जड़ तक ले जाती है कि कहीं ना कहीं ये सब आपसी जुड़ाव की कमी से जुड़ा है.
सही. और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर और मिलकर इन रिश्तों को, इस सामाजिक पूंजी को कैसे दोबारा मजबूत करें. शायद यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है.
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.